الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام احمد ہے اور میں میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہوں، میرا اصل جو فیلڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس۔ کیرل کی یونیورسٹی ہے کک اسٹیٹ، وہاں پہ میں وزٹنگ لیکچر کے طور پہ پڑھا رہا ہوں فور دا لاسٹ 7 ایئرس، اور اسی سے ریلیٹڈ ہی آف کورس میرے ایجوکیشن بھی ساری اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ابھی آپ لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں، اوور آل جو ٹائٹل آف سبجیکٹ ہے وہ ایتھکس اینڈ مینرزم کے اندر ایک ٹاپک مجھے دیا گیا ہے گیسٹ کے طور پہ، پرپز آف لائف۔ تو کیونکہ میں جہاں پہ پڑھا رہا ہوں جس یونیورسٹی میں 7 ایئرس سے وہاں پڑھا رہا ہوں، 6 ایئرس سے وہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک پیریڈ ونس اے ویک جس کے اندر میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس فری ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ویسی والنٹیئر کلاس کر لیتے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ ٹاپکس سے ریلیٹڈ یا کوئی اور اس طرح کی چیز۔ باقی اس کے علاوہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کو میں رن کرتا ہوں، اور اس میں اسکولس بھی ہیں اور زکوٰۃ کلیکشن ڈسٹریبیوشن بھی ہے اور اس طرح کے مختلف کام ہیں، ان تمام کاموں میں میری پارٹیسپیشن رہتی ہے۔ ایتھکس اور مینرزم، اس کی ڈیٹیل میں بتانے کے بجائے کہ کیا ایتھکس ہیں کیا نہیں ہیں، ان شارٹ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں آلریڈی پتہ ہیں۔ مینرز کسے کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آلریڈی پتہ ہے، اس میں کوئی بتانے اور لیکچر دینے والی بات نہیں ہے۔ ایتھکس کسے کہتے ہیں آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ موریلٹی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ موریلٹی کسے کہتے ہیں ہم لوگ، اور کون سی چیز ہے جو ہمارے حساب سے اچھی نہیں سمجھی جاتی، کون سی ویلیوز ہیں جو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، یہ لیکچر دینے والی باتیں نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو موسٹ اسینشیل جو بیسک پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کی صرف ایک ارج ہونی چاہیے کہ آپ نے ایتھکس اینڈ مینرزم کو فالو کرنا ہے۔ وہ کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے اندر کوئی لاء، کوئی قانون آپ کو دنیا کا اس کے اوپر باؤنڈ نہیں کر سکتا، آپ کو اس کے اوپر نہیں کروا سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ کہ جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں کہ ایک کلاس میں کوئی ٹیچر آیا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو چلیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی رول ہوتا ہو، یا جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے اسکول کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ جب ٹیچر آتی ہیں کلاس میں تو سب نے کھڑے ہونا ہے، یہ تو چلیں سکھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا، خاص طور پہ چھوٹی کلاسز میں رہتے ہوئے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ کھڑے نہیں ہو رہے، کھڑے ہو کریں جب ٹیچر آتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس ایتھک کو، یہ جو ایتھک آپ لوگوں نے ابھی شو کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس ایتھک کو منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ڈونٹ اسٹینڈ اپ، یہ پتہ ہے بات کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مت کھڑے ہویا کرو۔ اور اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، جس پوائنٹ کی طرف میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اصل میں رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی ایکشنز میں نظر نہیں آ سکتی آپ کو، اصل رسپیکٹ ہوتی ہے یہاں پر اور یہاں پر۔ اگر کوئی رسپیکٹ یہاں اور یہاں پہ ہے تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسپیکٹ جو ہے اس کا اظہار جو ہے، رسپیکٹ شو نہ ہوگی آپ کو اس بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کے اندر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات یا کسی بھی ناراضگی سے بچنے کے لیے صحابہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ کوئی ہم ایسی بات کو ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان کو برا لگے، نہ کہ اس چیز کے اوپر کہ وہ آئے ہیں تو ہم کھڑے تو ہو گئے لیکن آگے پیچھے ان کی اور کوئی بات نہیں ماننی، ہم نے آگے پیچھے ہمیں اور کوئی کیئر نہیں کرنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے وہ یہی ہیں کہ جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے وہ لائے کرتے ہیں ڈیپ ان یور ہارٹ۔ یہ چیز وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیپر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ مینرزم کے 10 پوائنٹس لکھیں یا فلانی چیز کے اتنے پوائنٹس لکھیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہارٹ کے اندر لائے کرتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی موٹیویشن کہاں سے آتی ہے، اس چیز کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے بالفرض یہ کہ آپ کو ایک چیز نہیں پسند اور وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ دس شوز یور مینر، تو آپ نے وہ چیز کو کرنا ہے، آپ کیا چیز ہوگی جو آپ کو باؤنڈ کرے گی اس چیز کے اوپر؟ تو اس کے، کیونکہ میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے، میں صرف بیچ میں کوئی چیز ٹچ کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ واحد چیز جو آپ کو باؤنڈ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر فیئر آف اللہ ہے، اللہ کا تقویٰ ہے آپ کے اندر، گاڈ کانشیسنیس ہے اگر آپ کے اندر، تو پھر یہ ہے کہ آپ، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جب آپ بالکل تنہائی کے اندر ہیں تب بھی اللہ ہے، جب آپ بہت بڑی گیدرنگ کے اندر تب بھی اللہ ہے، جب آپ کسی ویلکم پارٹی یا فیئر پارٹی کے اندر ہیں وہاں پر بھی اللہ ہوگا، اگر آپ کسی مسجد کے اندر ہیں وہاں پر بھی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اگر یہ کانشیسنیس بیکاز آف اللہ ہوگی تو پھر آپ کا بیہیویئر آئسولیشن میں بھی، گیدرنگ میں بھی، ہر جگہ پہ ایک جیسا ہوگا۔ لیکن اگر کانشیسنیس آف اللہ، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے آپ کے اندر اور دوسرے لوگوں کا ہے، تو پھر ہاں گیدرنگ ٹو گیدرنگ آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ میں ویریشن آتا رہے گا۔ جو اصل ٹاپک ہے میرا وہ ہے پرپز آف لائف۔ आप लोग क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के हिसाब से हमें क्या पता लगता है, क्योंकि साइंस ही पढ़ने आए हैं आप लोगों का, जाहिर बात है कि मेन इंटरेस्ट जो था वो साइंस के अंदर ही था, और आपको यही लगता है कि साइंस ही आपको करियर अच्छा दे सकती है, तो साइंस के हिसाब से क्या बनता है? यानी बड़ी ड्रामेटिक एंट्री होती है जब भी कोई आता है, तो साइंस के हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या आप बता सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं? सॉरी, नहीं, वो तो है ना कि आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट पर्पस ऑफ योर एजुकेशन, वो नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ, सॉरी, ये खिदमत खल के लिए आप कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। नहीं, आप लोग एक्सप्रेशन ही समझ रहे, पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्सीडेंट, ये नहीं आपको पता कि लाइफ जो है वो इसके पीछे कोई पर्पस नहीं था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। जो फर्स्ट, अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो जो फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ था वो कोई डिजाइन तो नहीं था, दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। जो सेल, फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और उसके बाद फिर ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स और कि एवोल्यूशन के बाद वो जो भी जो कुछ भी था वो सब कुछ दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और उसी के अंदर जो ज़्यादा ज़्यादा सर्वाइव कर गया, जो ज़्यादा फिट रह गया, वो ज़्यादा आगे चलता रहा, तो इस तरह एवोल्यूशन हुई थी। साइंस के, प्योर साइंस के हिसाब से, लिविंग रिलीजन अपार्ट, प्योर साइंस के हिसाब से लाइफ के पीछे कोई पर्पस नहीं है, लाइफ तो सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। जो बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा हो गया, या जो बहुत सारे जो पैरासाइट्स हो गए या बैक्टीरिया हो गया, ये जो सेल्स होते होंगे, ये सेल्स तो ये सेल्फ अवेयर तो नहीं होते, इनको तो नहीं पता कि आप जो बात कर रहे हैं कि सरफेस ऑफ ह्यूमैनिटी या फलाने के लिए ऐसा करके, ये तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इस चीज़ के हिसाब से इवॉल्व हो गए हैं, ये जो हमारे दिमाग के अंदर जो घुसा हुआ है ये ज़्यादा बेहतर है तमाम एनिमल से, इसलिए ये आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं। प्योर साइंस के हिसाब से रहेंगे तो देर इज़ नो पर्पज़ ऑफ लाइफ। जिस तरह से लाइफ हम लोग स्पेंड करते हैं वो सिर्फ यही होता है कि ये जो हमारी गिवन लाइफ है इसके अंदर कुछ हमारी वेल बीइंग हो जाए। इनफैक्ट बल्कि जो साइंस के या डार्विनिज्म के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, उनके अंदर तो यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, माइट इज़ राइट है, और नेचुरल सिलेक्शन का जो रूल है उसका है, उसके अंदर क्या है कि जो स्पीशीज़, जो एनिमल, जो ह्यूमन रेस ज़्यादा आउटस्मार्ट कर जाएगी, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, ज़्यादा हेल्दी होगी, वही आगे सर्वाइव करेंगे, जो वीक हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो पीछे रह जाएंगे। साइंस के हिसाब से लाइफ का पर्पस नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो पर्पस बताया है उसका, लाइफ का, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये कहा हुआ है कि मैंने जो ज़िंदगी को पैदा किया है वो इसलिए नहीं पैदा किया कि वैसे एक टाइम पास के लिए ही है, ये वैसे ये खेल तमाशा है, लाइबुम व लाबुम, ना तो ये खेल है ना कोई तमाशा है, ये जो टाइम इस लाइफ मिला हुआ है कि हम इंजॉय कर लें थोड़ा बहुत इसे। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, क्यों करेंगे, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आप लोग के लिए चल रहे हैं? अगर खिदमत खल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये, तो उसके लिए आप लोगों को ये बचपन से आप लोगों को क्या इसलिए पढ़ाया जा रहा है? ये तो बात नहीं है ना, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है? मुझे मेरे पेरेंट्स ने क्यों पढ़ाया, आपको आपके पेरेंट्स ने क्यों पढ़ाया था, किस पर्पस के लिए, क्या कि आप लोग रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकें और मेन रीज़न कमा सकें, ये रीज़न है ना असल, टू बी ऑनेस्ट ये रीज़न है। मेरी सारी एजुकेशन क्यों हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों स्कूलिंग करवाई थी, और जो बचपन से हर वक्त ख्वाब दिलाया होता था कि पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, पीछे रह जाओगे, ये हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे, क्यों नहीं आ रहे तुम्हारा ग्रेड, इतना जो डांट और इतना, मैंने तो खैर बहुत डांटे खाई हुई हैं इस चीज़ में, तो ये जो अगर इतना ज़्यादा जो हमारे सर के ऊपर सवार किया होता था, रीज़न क्या होता था? वो नहीं देखना चाहते थे कि मैं पीछे रह जाऊँ, कि बाकी जो है वो कोई अच्छी अर्निंग करना शुरू हो गए हैं, बाकियों के लाइवलीहुड बहुत अच्छा हो गया है, मैं पीछे रह गया हूँ, ना मैं कोई बिज़नेस कर सका हूँ अपना, ना मैं कोई जॉब अच्छी जगह कर सका हूँ, और ना ही कोई ऐसे रिस्पेक्ट है मेरी, वो ये लॉस नहीं देखना चाह रहे थे। सेम केस आपके पेरेंट्स का भी है कि प्राइमरी रीज़न क्या है कि आपको क्यों उन्होंने बचपन से एजुकेशन दिलाई, हमेशा से तो नहीं उनको पता होगा कि आपने BDS में जाना है, लेकिन एटलीस्ट ये कि हमने एजुकेशन दिलानी, मेन पर्पस क्या था? जस्ट बिकॉज कि आपको जब आप 25 ईयर्स के हो के सारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, तो द रिमेनिंग 25 ईयर्स या 35 ईयर्स वो आप एक अच्छी रिस्पेक्टेबल अर्निंगफुल लाइफ गुजार सकें, ये मेन रीज़न था बस, दैट दैट इज़ इट। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इसलिए नहीं पैदा किया था ये सब कुछ, ये मेरी पर्पस ऑफ क्रिएशन नहीं है यार। अल्लाह ताला ने पर्पस ऑफ क्रिएशन कुछ और बताया। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जिन्नात को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है, इस पूरी आयत को मैं अभी डिटेल में दोबारा समझाता हूँ। मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अच्छा, अब नंबर वन बात ये है कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी चीज़ों को भी तो पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं हमें, वो अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, वो किसी और ने तो नहीं पैदा किया था। चाहे वो एनिमल किंगडम है, चाहे वो प्लांट किंगडम, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया था। जो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड है जो हमें नहीं नज़र आती, जिस तरह कि जिन्नात का तो जिक्र हो गया, फरिश्तों का कोई जिक्र है, हमारे किसी भी वो स्कैनिंग में नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है तो वो भी हैं, उनका अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया है शायद के अंदर। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये मिट्टी जो है ये किसने पैदा की, अल्लाह ताला ने बनाई थी ना, ये हमने ख़ुद तो नहीं कोई बनाई इस चीज़ को। ग्रेविटी किसने बनाई थी, अल्लाह ताला ने बनाई थी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तमाम फील्ड्स में आती हैं, वो तमाम चीज़ें किसने बनाई थी, अल्लाह ताला ने बनाई थी। लेकिन अल्लाह ताला जिक्र यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का कर रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद दो मखलूक ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने, जिनको अल्लाह ताला ने फ्री विल के साथ पैदा किया था, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और जिस तरह मर्ज़ी चाहे शेड्यूल कर सकते हैं। मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग तो नहीं है, मैं फिज़िकली, मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे स्पीच पावर दी है उनके अंदर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं सच भी बोल सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे डाइजेशन के अंदर कोई ये कमी तो नहीं रखी ना कि जो हराम चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं वो मेरा डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, ऐसा तो नहीं है, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा सब कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मेरा दिमाग है, ये जो हराम सोच है, ये जो चीज़ें अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ये उनको प्रोसेस नहीं कर सकेगा, वो बातें मेरी मेमोरी में सेव नहीं हो सकेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो सब कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, बल्कि ज़्यादातर प्रोसेस चल ही उसका रहा होता है जो चीज़ें नहीं अल्लाह ताला को पसंद होते हैं। फिज़िकली तो कोई बाइंडिंग नहीं है मेरे ऊपर, फिज़िकली मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई बाइंडिंग नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमें हाथ पांव दिए हैं और ख़ास तौर पर यंग एज के अंदर, इन स्किन के ज़रिए जो है वो मैं किसी के ऊपर जुल्म भी कर सकता हूँ और मैं किसी नीडी की हेल्प भी कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे लिए खुला मैदान है। फ्री विल के साथ मैं पैदा हुआ, मैं जो मर्ज़ी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे फिज़िकली बाइंड नहीं किया, मेरी क्रिएशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे फिज़िकली बाइंड कर रही है। इसको और इस तरह समझें कि अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे कुछ परिंदे ऐसे बनाए हैं जो अल्लाह ताला ने दिन के लिए बनाए हैं। जब दिन सुबह होगी, अब हमें पता है कि वेदर के साथ साथ सर्दियों में, अब जिस तरह अभी किस टाइम पे सुबह सूरज निकलता है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो इस वक्त, यानी कि अगर हम 8:20 की बात करें तो सूरज अच्छा खासा ऊपर होता है, अच्छी खासी गर्मी होती है। शाम के हिसाब से देखें, यहाँ तो पाकिस्तान में फिर भी कम है, जो पोल्स की तरफ मुल्क हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव या तो न्यूजीलैंड उस साइड पर रहते हैं या बिल्कुल ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहते हैं, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, वो बताएंगे कि गर्मियों के अंदर उनका दिन जो होता है पूरा दिन वो कोई 18-19-20 घंटे का होता है, और शाम जो होती है, रात जो होती है गर्मियों के अंदर, वो तो बहुत थोड़ी सी होगी। लेकिन वाइस वर्सा आजकल के हिसाब से वहाँ पे क्या होता है कि लोग, जो लोग बिलफज नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो सुबह उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया, दफ्तर गए, दफ्तर जाके फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी देर से जाके सूरज निकलता है, और 3 बजे के करीब उनकी हो जाती है, मगरिब हो जाती है, सूरज ग़ुरूब हो चुका होता है, तो वो दिन इतने शॉर्ट होते हैं। हमें अगर सुबह उठना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अलार्म लगाएंगे उसके ऊपर, हम किसी और को भी कहेंगे कि मुझे सुबह उठा देना, और गर्मियों के अंदर जो है वो उठना और मुश्किल होगा, ख़ासतौर पर जब रोज़े अब गर्मियों में क्योंकि आते हैं, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है उठना उस वक्त। लेकिन यही जो परिंदे जो अल्लाह ताला ने पैदा किया था जिनको दिन के लिए, इनका सिस्टम ऑटो चल रहा होता है, जैसे ही प्री डॉन होगा ये खुद ब खुद उठ जाते हैं, ये उठेंगे अपने टाइम के मुताबिक और चले जाएंगे जहाँ भी इन्होंने तलाश करना है दाना अपना। और शाम को इनके अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने प्री प्रोग्रामिंग की हुई है, इनकी तख्लीक ऐसी है, इस तरह करके अल्लाह ताला ने इनको बाइंड किया हुआ है कि शाम का उनको अंदाज़ा होता है कि अब कितनी देर रह गई है, हम कहाँ तक पहुँच गए, उड़ उड़ के हम कहाँ चले गए हैं। उनके पास गूगल मैप्स तो नहीं है ना कि वो देख रहे हैं कि, या ये तो नहीं होता रास्ते में लोग पूछते हैं ये किधर जाता है रास्ता ये वाला, ऐसे तो नहीं वो परिंदे कर रहे होते ना, दे वेरी वेल नो कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। कभी आंधी तूफान आए तो कभी आप देखा करें कि जब आंधी आती है तो परिंदे किस तरह उड़ उड़ के दूर जा रहे होते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद एट द राइट टाइम वो अपने घोंसलों तक पहुँच चुके होते हैं, जब रात होती है, मगरिब का टाइम होता है, वो पहुँच चुके होते हैं अदब। और जिस परिंदे को अल्लाह ताला ने रात के लिए पैदा किया था, जिस तरह बैट्स हो गई, उल्लू हो गए, ये जब रात होगी तो ये निकलेंगे। आपको दिन के वक्त ये तो फिरते नहीं नज़र आ रहे होंगे, वो रात के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया था, वो रात ही को निकलेंगे। उनको लिए ये नहीं कि अलार्म लगाया हुआ उन्होंने कि बस अब उठने का टाइम हो गया मेरा, मैं उठूँ और जाऊँ मैं दाना ढूंढने के लिए, उनको इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये कह दिया कि मैंने दिन को बनाया है काम के लिए, रात को बनाया है आराम के लिए, लेकिन हमारी मर्ज़ी, हम पूरी रात फिल्में देखते रहे, हम लोग हम पूरी रात जो है वो जो मर्ज़ी करते रहे, पूरे दिन हम सोते रहे, 3 बजे सो के उठें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता उसके ऊपर। आपकी फिज़िकली आप इसके ऊपर बाउंड तो नहीं है कि आप दिन को जो है ना आप दिन के बाद उठ नहीं सकते, रात को आप ये नहीं कर सकते। तो हम लोग फुल फ्री विल के साथ पैदा हुए हैं, एक इंसान और एक जिन्नात, ये दो मखलूकात ऐसी हैं जो फुली फ्री विल के साथ पैदा हुए हैं। जो फरिश्ते हैं वो डम मखलूक नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर भी जिक्र आता रहता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा करने का जिक्र किया था फरिश्तों के आगे, तो फरिश्तों ने ऑब्जेक्ट किया था, सवाल पूछा था कि आप क्यों ऐसी चीज़ को पैदा कर रहे हैं, वही अफसे कुद्दे माँ जो खून बहाएगा और कत्ल करेगा। अल्लाह हम मौजूद हैं, हम आपकी हम भी बयान करते हैं, हम आपकी तस्बीह भी करते हैं, आपकी पाकी भी बयान करते हैं, हम मखलूक मौजूद है। और हम इंसान भी यही समझते हैं कि बंदा बहुत नेक हमें नज़र आता है, कोई बहुत तकवे वाला नज़र आता है, तो हम क्या कहते हैं, तो फरिश्ते की तरह है बिल्कुल। तो वो एक हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट जो अल्लाह ताला की मखलूक हो सकती है ओबीडियंस के हिसाब से, वो फरिश्ते हैं। तो फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला को आगे कहा, तो फरिश्ते जो हैं वो हैं सेल्फ अवेयर ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास फ्री विल नहीं है। उनके पास अल्लाह ताला ने कह दिया नहीं, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन्नी आलम माला तालम, मैं वो बातें जानता हूँ उस डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं समझ सकते बात को। वो बात क्या है कि आखिर ऐसी क्या ख़ास बात थी, और अल्लाह ताला ने क्यों इंसान ही को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है, कि जो कि हालांकि हम लोग कितने, आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह के मुसलमान हैं, किस तरह के ओबीडियंट हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी इस तरह क्यों कहा है। उसकी वजह यह है कि जो लफ्ज़ है इबादत का, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा रिपीटेडली बोले जाते हैं, इतने ज़्यादा रिपीटेडली बोले जाते हैं कि हम लोग उन वर्ड्स की मीनिंग, जो सही असल मीनिंग है उसका, हम उसको नहीं सही तरह समझते। इबादत का जब भी लफ्ज़ बोला जाएगा हमारे माइंड में क्या आता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया था इबादत के लिए, इसका मतलब ये है कि अभी इस वक्त हम लोग कोई इबादत नहीं कर रहे अल्लाह ताला की, और इसका मतलब ये है कि अभी ज़ोर का जाम जब तक नहीं होगा तब तक कोई इबादत नहीं है। किसी का रोज़ा है हमें से, नहीं जी, कोई ज़कात इस टाइम दे रहे हैं हम लोग कोई हज कर रहे हैं, ये इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है, ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, वो अभी कोई मार धाड़ भी नहीं हो रही ना, कुछ हाथ भी नहीं हो रहा, अभी मार धाड़ भी नहीं हो रही कोई इनमें से, तो हम अभी कोई काम नहीं कर रहे। अगर हम उस कन्वेंशनल जो हमारे माइंड्स के अंदर जो लफ्ज़ बैठा हुआ है इबादत का, अगर हम उस सेंस में देखें, तो हम तो इनमें से कोई काम अभी नहीं कर रहे। अब सही मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। अब्द कहते हैं जिससे ये इबादत का लफ्ज़ बना है। अब्द का लफ्ज़ हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नाम, लोगों के नाम होते हैं, अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान, अब्दुलरहीम। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अल्लाह का नाम होता है ना, अल्लाह हो, रहमान हो, रहीम हो, रज़ाक हो। तो अब का मतलब होता है ग़ुलाम को कहते हैं, स्लेव को कहते हैं, ठीक है। हाँ, इंसान के लिए आप इस तरह कह सकते हैं कि हम बंदगी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन असल जो लफ्ज़ है वो, जो असल मतलब है इसका, वो है ग़ुलाम को कहते हैं, स्लेव को कहते हैं। मैंने इसलिए इंसानों और जिन्नात को पैदा किया है, वो मखलूक जो कि फ्री विल वाले हैं, ताकि वो मेरी ग़ुलामी इख्तियार करें, ठीक है। ये लफ्ज़ को अच्छा नहीं लगता सुनने में, ग़ुलामी, लेकिन वो मेरी ग़ुलामी इख्तियार करें। लेकिन किस तरह इख्तियार करें, बाकी जो मखलूक हैं दे आर बाउंड, हम लोग कोई बाइंडिंग नहीं हमारे ऊपर, वो बाउंड है हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। मैं 100% आज़ाद होने के बावजूद कि मैं इन आँखों के साथ कोई एक्सीलरेटेड चीज़ भी देख सकता हूँ, और मैं इस ज़ुबान के साथ किसी को गाली भी दे सकता हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा भी सोच सकता हूँ, मैं फिज़िकली किसी के साथ हार्म भी पहुँचा सकता हूँ, वो तमाम काम मैं कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर कोई ख़ास बाइंडिंग भी नहीं है। तो फ्री विल के बावजूद, अगर मैं उसके बावजूद, आज़ादी होने के बावजूद, मैं फिर भी किसी और का ख्याल रखता हूँ कि अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है, मैं हराम चीज़ नहीं खाता, मैं हराम चीज़ नहीं पीता, मैं हराम चीज़ नहीं सुनता, मैं हराम चीज़ के ऊपर नहीं हंसता, जोक्स इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं हराम चीज़ के बारे में नहीं सोच रखता, ना मैं इरादा रखता हूँ उस चीज़ का, बल्कि मैं हर चीज़ को अपने हलाल के दायरे में रखता हूँ। ताकि तुम में से कौन होगा जो आज़ाद होने के बावजूद अल्लाह ताला नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह ताला की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम साइंस के ज़रिए क़यामत को नहीं प्रूव कर सकते। हाँ, डेथ ऑफ द यूनिवर्स एक ज़रूर है थ्योरी, कि एक तो है ना कि हमने तो मर ही जाना है, ऑफकोर्स इवेंचुअली मर ही जाना है, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद, चंद साल बाद कहीं ना कहीं मर जाना है। और एवरेज लाइफ का ये मतलब नहीं होता कि अगर एवरेज लाइफ पाकिस्तान में 57-58 है तो उतना तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, उससे पहले भी मैं मर सकता हूँ। तो एक तो हमने इंडिविजुअली मर जाना, लेकिन यूनिवर्स ने भी ओवरऑल जो है उसके ऊपर भी डेथ ऑफ द यूनिवर्स की थ्योरीज हैं, लेकिन क़यामत उसको नहीं प्रूफ किया जा सकता, क्योंकि क़यामत क़याम से है कि दोबारा ज़िंदा होना है, वो साइंस के रैल में नहीं आता। फरिश्ते किसी भी साइंस की थ्योरी में नहीं आ सकते। आप लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी किसी स्कैन के अंदर, कोई MRI, कोई CT स्कैन, किसी मेडिकल टेस्ट, किसी चीज़ के अंदर रूह नहीं आ सकती, कहीं शैतान नज़र नहीं आ सकता आपको कि शैतान कोई चीज़ है भी कि नहीं है। तो ये जितना कुछ भी है कि जन्नत है, जहन्नम है, और जो कुछ भी जितनी भी बातें होती हैं जिनको कहते हैं हम अकीदा, डॉगमा, जितना भी है, ये सब कुछ जो है ये गैब की चीज़ें हैं। गैब कहते हैं अनसीन को। इस लाइफ में रहते हुए इनके साथ हमारा कभी भी इनकाउंटर नहीं हो सकता, फिज़िकल इनकाउंटर इस लाइफ में रहते हुए हमारा कभी नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी अल्लाह ताला जिससे डरा रहे हैं, जिसके बारे में प्रॉमिस कर रहे हैं रिवॉर्ड्स के बारे में, अल्लाह ख़ुद, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ अनसीन है, दुनिया में है ही नहीं। एक तो ख़ुद भी छुप गए अल्लाह ताला, और दूसरा ये कि अब इसके बावजूद कौन जो है वो मेरी बंदगी इख्तियार करेगा। ये है पर्पज़ ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने जब डिफ़ाइन किया हुआ है। ये आयत का यहाँ पे तर्जमा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला की डिमांड हमसे एग्जैक्टली है क्या, अल्लाह ताला की हमसे क्या डिमांड है। एक तो ये डिमांड हो गई कि हमारी जो फुल लाइफ के डेली रूटीन और ओवरऑल लाइफ के एम्बिशन सब कुछ है वो हलाल के दायरे में हो। इसको समझने का आसान तरीन तरीका ये है कि जामे तिरमिज़ी एक हदीस की बुक है, उसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल महारिम, जो कोई हराम चीज़ों से बच गया, जो कोई हराम चीज़ों से बच गया सबसे बड़ा इबादत गुजार है। इबादत का पर्पज़ क्या था कि मेरी नाफरमानी ना की जाए। जो कोई हराम से बच गया सबसे बड़ा इबादत गुजार है। हमारे नज़दीक इबादत का सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन आएगा, जो तहज्जुद पढ़ता होगा, रोज़ाना रोज़े रखता होगा, माथे के ऊपर निशान पड़ चुका होगा सजूद की वजह से, या हर वक्त अपना माल अल्लाह की राह में देता होगा, सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता होगा। हमारे माइंड में इस तरह के कुछ स्टीरियोटाइपिंग आती है, लेकिन रसूल सल्लम ने क्या बता दिया, जो हराम से बच गया ये सबसे बड़ा इबादत गुजार है। अब जो अल्लाह ताला ने जिस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करना है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, जन्नत के अंदर किस ग्रेड पे आप जाएंगे या जहन्नम के अंदर किस ग्रेड के ऊपर जाएंगे, तो ऑफ़ कोर्स उसकी इवैल्यूएशन होगी, उसका कोई टेस्ट होगा। जिस तरह आप लोग अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अब उसकी इवैल्यूएशन होगी, उसका टेस्ट होगा कि इनमें से कौन पास कर रहे हैं, कौन फेल कर रहे हैं, किस किस ग्रेड पर जा रहे हैं, टॉप कौन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए। सिमिलरली जो अल्लाह ताला ने हमें जिस बेसिस के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, या हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा एग्जामिनेशन है, वो अभी करंटली तो हो रहा है, लेकिन एक हमारे एग्जामिनेशन में और अल्लाह ताला के एग्ज़ाम लेने में बहुत फ़र्क है। बिलफर्ज आपके कोई टीचर आपको कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है अभी आपका, तो उसमें क्या होगा, 50 स्टूडेंट जैसे आप लोग बता रहे हैं क्लास की स्ट्रेंथ है, तो वो क्या करेंगे, 50 पेपर्स की एक ही पेपर बनाएंगे और 50 कॉपीज़ करेंगे उसकी, सब ने वो पेपर सॉल्व करना है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, एक ही पेपर है जो सब ने सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पे आएगा कि अगर कोई वाइवा भी था आपका, तो वाइवा के अंदर वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि रफली इसी किस्म के सवाल पूछे जाएंगे, उनमें रैंडमली आपके ऊपर कोई और सवाल आ गया, बाकी दूसरे के ऊपर कोई और नहीं आया, लेकिन अदरवाइज मेनली हमारी एग्जामिनेशन होती ही है कि हम लोगों ने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछने होते हैं, एग्ज़ाम एक होगा। लेकिन जो अल्लाह ताला ने जिस एग्जामिनेशन हॉल में हमें डाला हुआ है, जो हमें लीज ऑफ लाइफ मिला हुआ है, इसके अंदर मेरा आपका हर एक का एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम कोई हमें से हर कोई जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटी और डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनैलिटी और डिफरेंट सेट ऑफ नेमतों के साथ पैदा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर मैंने समझा दिया कि फ्री विल है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कोई फ्री विल नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। जब आप पैदा हुए थे उससे पहले आपकी तरफ आज कोई फरिश्ता फॉर्म लेके आया था कि आप किस जेंडर का होना चाहते हैं, आपका हाइट कितनी हो, कि बाल का रंग कैसा हो, आपकी स्किन कलर कैसा हो, आपकी आवाज़ कैसी हो, फिर तो सब के सब बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े सब के सब जो हैं वो तो बहुत ही कोई सुपरस्टार होते हैं। तो कोई ऐसा कोई फॉर्म आया था? अच्छा आप बताएं कि आप कहाँ किस मुल्क में पैदा होना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हों, वो फिर तो पाकिस्तान में शायद कोई भी पैदा ना होता, सारे के सारे अमेरिका यूरोप में पैदा होता है। आपके पेरेंट्स कितने वेल्दी हों क्या हो, फिर तो सब के सब बिल गेट्स के बच्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई चॉइस पूछी गई थी हमसे किस ज़माने में पैदा होना है? शायद थोड़ा सा और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या दो तीन जनरेशन के बाद वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अच्छे ज़माने में पैदा होंगे, कि वहाँ पे उस ज़माने में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो शायद ज़्यादा अच्छी होगी और चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, वो शायद ज़्यादा अच्छी होंगे। जो बहुत पीछे पैदा हुए थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। ये जो तमाम चीज़ें हैं, जहाँ पर हमारे पास चॉइस है वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी चॉइस थी, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो अल्लाह ताला ने हमसे पूछी थी। हर कोई, आप में से हर कोई जो है उसका जीन्स का पैटर्न फ़र्क है, उसको डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स मिले हैं। फिजिकल अपेयरेंस की भी सिर्फ बात नहीं हो रही, ओवरऑल पर्सनैलिटी की भी बात हो रही है कि सेट ऑफ जीन्स जो हैं वो डिफरेंट मिले हैं, आपके पेरेंट्स आपको डिफरेंट मिले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं जेनेटिकली लेके आया था, मैं उसको आउटग्रो नहीं कर सकता। इसी तरह ही जो जेनेटिक डिसेबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हैं उनके बारे में कुछ खास नहीं किया जा सकता। बाकी बीमारियां जो हैं जिनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी नाहली है, मिसाल के तौर पर पोलियो का मसला पाकिस्तान नहीं हल कर पा रहा, ये हमारी नाहली है। लेकिन जो जेनेटिक मसले हैं, कोई अगर किसी जीन्स के साथ ही ऐसे पैदा हो गया, उनके साथ कुछ नहीं किया जाता, वो पूरी बॉडी में एक ही कॉपी पड़ी हुई है जीन्स की, सिवाय वो चंद सेल्स के जिसमें रेड ब्लड सेल्स ऐसे हो गए जिनके अंदर जीन्स की कॉपी नहीं होगी, बाकी हर सेल में कॉपी पड़ी हुई है, किस किस को हम चेंज करेंगे? तो हम उससे आउटग्रो नहीं कर सकते। एक चीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दी थी, फिर उसके बाद किस एनवायरनमेंट में मैं पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, बहन भाई कितने थे, उनमें मेरा सीक्वेंस कहाँ पे आता था, मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, या बाकी और फाइनेंशियली कैसे थे, किस मुल्क के किस इलाके में पैदा हुए थे, एजुकेशन किस स्कूल में हासिल की थी, टीचर्स कैसे थे, फ्रेंड्स कैसे थे, कज़न्स कैसे थे, फिर उस ज़माने में टीवी था नहीं था, किस टाइप के टीवी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्डअप करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को। जो बचपन के अंदर जो बिल्डअप हो रही थी पर्सनैलिटी वो हो रही है, जीन्स इनहेरिटेड और बाकी सब कुछ जो कुछ हमें मिल गया था और बाद में बड़े होने के बाद फिर हमने जो कुछ एक्वायर किया था। इस तमाम बातों के लिए एक कॉमन वर्ड, एक सुपर सेट वर्ड अल्लाह ताला कुरान के अंदर यूज़ करते हैं, शाकिला। हमने हर शख्स को एक शाकिला के अंदर पैदा किया है कि उसके एक लिमिट है, उसकी एक बाउंड्री है, उसकी एक पर्सनैलिटी है जिसके हिसाब से उसे पैदा किया है। वो हम में से हर एक का डिफरेंट है, हर का घर का सेटअप हर एक का डिफरेंट है, लेकिन जो कुछ भी है मैं और आप जो इस कमरे में हैं हम लोग सुपर प्रिविलेज्ड हैं, इस मुल्क के अंदर सुपर प्रिविलेज लोग हैं हम लोग। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन रेट क्या है, जो एजुकेशन का रेट है पाकिस्तान का, कितने लोग लिटरेट हैं, उनमें से कितने हैं जिनकी हायर एजुकेशन हो सकी थी, जो इंटर कर सके थे, उनमें से कितने होंगे जो मेडिकल फील्ड के अंदर आ सके थे, जो 18 करोड़ की आबादी में कितने थोड़े से होंगे, फिर उनमें से कितने होंगे जिनके पेरेंट्स भी हैं, वो ऑर्फन नहीं पैदा हुए थे, बहन भाई भी हैं, इस एजुकेशन को अफोर्ड भी कर सकते थे, फिज़िकली आप में से किसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिसेबिलिटी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप और भी काउंट करते जाएंगे तो जो कुछ भी आपको अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया ना, आप क्रीम में फॉल करेंगे, इस मुल्क की क्रीम होगी, मोस्ट प्रिविलेज होंगे आप लोग। लेकिन उसके बारे में भी इमेजिन करें, जो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने, जिस तरह हम लोग खबरों में देखते हैं कि किसी कब्रिस्तान में छोड़ के आ गए थे, खबर मिली कि एक बच्चा जो है उसकी मिला है, सर्वाइव कर गया बच्चा, कब्रिस्तान के अंदर उसकी बॉडी पकड़ी गई थी, तो उस बच्चे का क्या फॉल्ट था इसके अंदर? या कोई बच्चा जो है वो बाय बर्थ उसने इनहेरिट कर लिए कुछ जेनेटिक बीमारियां, HIV उसके पेरेंट्स में से किसी को था, उसने इनहेरिट कर लिया उस चीज़ को, उसमें उस बच्चे का क्या फॉल्ट था? कोई बच्चा जो है इस तरह पैदा हुआ कि उसकी जो बॉडी है वो फिज़िकली इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग उसकी तस्वीर भी देखना नहीं पसंद करेंगे, तो उस बच्चे का इसमें क्या फॉल्ट था? जो यतीम पैदा हुए, बीमार पैदा हुए, या किसी और चीज़ में पैदाइशी तौर पे अंधे पैदा हो गए, उसमें उनका क्या फॉल्ट था? अब थोड़ा सा एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ, और इस टाइप के टॉपिक्स में मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर देता हूँ। एक ख़ास डिसेबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में हम लोग कभी भी सिंपथेटिक नहीं होते उस बंदे के साथ। अगर आपको कोई नज़र आता है कि बिलफर्ज़ कोई आपके क्लास फेलो में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी आता है जो कि टांगों से मज़ूर है, तो वो व्हील चेयर के ऊपर आता है, तो तो ओवरऑल क्लास जो होगी वो उसके साथ सिंपैथेटिक ज़रूर होगी। बिलफर्ज ये कि उसको हेल्प चाहिए, अगर कि उसने मतलब यहाँ पे व्हील चेयर लानी है, कुछ करना है, तो बॉयज़ में से आप लोग कोई हेल्प करेंगे, उसकी सिंपैथेटिक होंगे उसके साथ। कोई ब्लाइंड था तो उसके साथ लोग सिंपैथेटिक होंगे। एक डिसेबिलिटी अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हुई है जिसके साथ हम लोग कभी भी सिंपैथेटिक नहीं होते, उल्टा पूरी सोसाइटी में मजाक उड़ाया जाता है, जिनको अल्लाह ताला ने ना तो प्रॉपर मेल पैदा किया ना प्रॉपर फीमेल पैदा किया। हमारे लिए ये तबका जो होता है ये सिर्फ मजाक होता है। कहीं मार्केट के अंदर हमें कहीं खुश कोई नज़र आ जाए, हम हंसते हैं, जान छुड़ाते हैं, कोई मांगने आ जाता है, हम दूसरे को तंग करते हैं उसके ऊपर हमेशा हंसेंगे हम लोग। लेकिन ये भी तो सोचें इसमें उस बेचारे का क्या फॉल्ट था, या तो हम कहें ना कि हाँ उसने हरकत ऐसी की थी जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली है, इसमें उस बेचारे का क्या फॉल्ट था कि वो इस डिसेबिलिटी के साथ हुआ, और मेरे लिए मैंने क्या कमाल ऐसा किया था कि मैं इस डिसेबिलिटी के साथ नहीं पैदा हुआ, मैं क्या डिज़र्व करता था इस तरह और वो नहीं डिज़र्व करता था। तो वो एक ऐसा तबका है हमारी सोसाइटी का जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मजाक है और कुछ भी नहीं है। ये पिछले चंद सालों से मैं एक लेक्चर सीरीज जिस तरह का मैं बता रहा हूँ कि मेरी ये फील्ड या मेरी एजुकेशन तो नहीं है ये वाली, लेकिन एक एहसास के साथ इस टाइप के मैं टॉपिक्स करता रहता हूँ। तो चंद साल पहले, 5-7 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर अच्छा नहीं था क्लास लेने में, या तो एक केस सामने आया था एक ऐसे खुशरे का कि जो किसी दर्स के अंदर गया था, पिंडी के अंदर जो PC है वहाँ पे कोई औरतों का दर्स होया करता था कुरान के ऊपर, तो वहाँ पे उसने जाके अटेंड करना शुरू किया। जैसे आप सबको पता है कि जितने भी खुशरे होते हैं मेनली तो वो होते मेल हैं डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन वो फिर औरतों वाला रूप किया होता है, लंबे बाल होते हैं, मेकअप किया होता है उस तरह। उसी तरह वो जाया करता था वहाँ के जितने भी जो पॉश सोसाइटी की जो खवातीन आई कुरान पढ़ने हैं, लेकिन उन्होंने एतराज़ किया कि ये क्या मजाक है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे और इस तरह करके इसको यहाँ से फारिग करो। तो मेरे पास वो उसका केस आया था। मैंने एक और इस्लामाबाद में एक स्कॉलर होते हैं मेल स्कॉलर, उनके एक उस तरह होता है सर्कल है, कुरानिक सर्कल्स है, वहाँ पर मैंने रेफ़र कर दिया। उधर भी लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर जो मेरी टूटी फूटी अपनी क्लास होती थी मैंने उसके अंदर उसको बुला लिया, और पहले जो स्टूडेंट जो लड़के लड़के ही होते थे थोड़े 5-6 लड़के इस तरह, तो उनको मैंने ये कह दी, पहले समझा दिया कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा, बाकी हंसी मजाक अपनी जगह, इस चीज़ को मैं टॉलरेट नहीं करूँगा कि आप में से किसी ने उसका मजाक उड़ाया। वो जो मर्ज़ी कपड़े पहन के आता है, वो जिस तरह मर्ज़ी आता है, वो उसके अंदर अब ये देखें कि वो उसके अंदर कितना एहसास पैदा हुआ है कि वो फिर भी आ रहा है और इस्लाम की कोई बात सुनना चाह रहा है, वो उसकी ज़ीरो एजुकेशन है। तो वरल उसने आहिस्ता करके आना शुरू हुआ। फिर मैंने उसके इंटरव्यू टाइप भी किया, और जाहिर बात है कि मेरा उसके साथ एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी हो गया, कॉन्टैक्ट भी काफ़ी गहरा बन गया उसके साथ। तो मैंने उसे उसकी लाइफ स्टोरी भी पूछी थी, तो उसने इस तरह बताया कि वह है मुझसे बड़ा, वो 8-10 साल बड़ा है वो। तो उसने मुझसे ये कहा था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने जो है अली शेर रखा हुआ था, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हो गया कि मैं इस डिसेबिलिटी के साथ हूँ तो अली रज़ा रख दिया नाम। 5 साल तक का जब मैं हुआ था तो पेरेंट्स, जारी बात है उनको भी बाकी और लोग भी कहते रहते थे, तो पेरेंट्स ने क्या किया, लाहौर शहर के अंदर गए, उखाड़ा के रहने वाले हैं वैसे वो, लाहौर शहर के अंदर गए और वहाँ पे ये जो खुसरों के जो बड़े होते हैं इनको गुरु बोलते हैं, तो उनके हवाले जाकर उनको जाके दे आए। अगर 5 साल का आपके रिलेटिव में कोई बच्चा है, कोई कज़न्स में है, आपके बहन भाई अगर बड़े हैं उनका कोई है, या आपके अपनों कोई बहन भाई छोटा है, आप 5 साल के बच्चे को इमेजिन करें। 5 साल का बच्चा वो होता है कि अगर आप उसको कहीं प्ले लैंड में भी ले आए ना, वो 5-6 घंटे खेलेगा, उसके बाद वो रो के अपनी अम्मी को ही बुलाएगा कि मेरी अम्मी कहाँ है। उस बच्चे की तो अपने माँ बाप उसको छोड़ के आए उधर, वो रात को रोएगा, रात को नहीं सो रहा, खाना नहीं खा रहा, वो किसको बुलाएगा, अरे माँ बाप को ही बुलाएगा वो, उसमें उस बेचारे का क्या कसूर था। और फिर उसके बाद जिस तरह की जारी बात एजुकेशन कोई नहीं होता, जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो उसमें उस बच्चे का क्या फॉल्ट था। ये तो आप लोग बाय वर्चू यहाँ तक हासिल हो गए थे ना। देखिए बचपन में अगर मुझे चॉइस दी जाती कि बेटा आपने स्कूल जाना है, जाओ नहीं जाना ना जाओ, मैं तो इलिटरेट रहता, कौन जाना चाहता है स्कूल, मैं तो इलिटरेट रहता हमेशा, मैं तो ना जाना चाहता। ये तो पेरेंट्स ने खैर किया, चाहे हम उस टाइम जितना मर्जी बुरा भला कहते हो कि हमें नहीं जाना स्कूल और ये मुसीबत है वो है, लेकिन अब जाके रियलाइज़ यही होता है कि हवा के जो कुछ हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर था। तो बहरहाल वो फिर उसके बाद अब एक और मुसीबत क्या है कि कहने को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 है जिसके अंदर स्लेवरी पाकिस्तान में बैन है, लेकिन मॉडर्न डे स्लेवरी के हिसाब से ये जो खुसरे होते हैं ये सारे स्लेव्स होते हैं, इनके गुरु ने इनको लिया होता है, इन्होंने जो भी कमाते हैं वो जाके पैसे जमा कराने होते हैं, उनके गुरु ने आगे अपना भत्ता जमा कराना होता है। ओवर द पीरियड मेरी को ज़्यादा इनकम तो है नहीं, तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स थोड़े थोड़े पैसे करके उसको ख़रीदा था और उसको आज़ाद किया था। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अब आप ये रियलाइज़ करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वाइन तो दू नेमत अल्लाह ला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना बैठ जाओगे ना तुम कभी शुमार ही नहीं कर सकोगे, तुम्हारे मेजरमेंट में आ ही नहीं सकेंगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या क्या अता किया हुआ है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं कलीलम मा तशकुरून, तुम बहुत ही नाशुक्री करते हो अल्लाह ताला की, तो बिल्कुल भी शुक्रगुजारी नहीं करते कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमें अता किया। तो पर्पज़ ऑफ लाइफ ये नहीं है कि मैं अपनी एक सेल्फिश लाइफ गुजारूँ, मेरी अपनी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी हो, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे पास लैपटॉप हो, मेरे पास टैबलेट्स हो, गाड़ी हर किस्म के नए मॉडल की हो, सब तमाम बैंक्स का क्रेडिट कार्ड मैंने रखा हो, तमाम फुल एक स्टाइलिश ज़िंदगी मैं गुजारूँ और बड़े बड़े क्लब क्लास के फ्लाइट्स के अंदर मैं ट्रैवल करूँ और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं सबका वीज़ा जो है वो मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगा हो, स्टैंप हो, ड्यूअल नेशनैलिटी हो वगैरह। अल्लाह ताला ने इस सेल्फिश लाइफ के लिए मुझे पैदा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम नेमतें प्रिविलेज पैदा किया। अब देखेंगे कि मैं कितना अल्लाह ताला का हक अदा करता हूँ और कितना लोगों का हक अदा करूँगा। उस बंदे के बारे में क्या ख्याल होगा जो एक डिनर के ऊपर जाके बूफे जब लगता है तो 1300-1400 रुपए का वो बूफे करके आएगा और उसी के अपने इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो दो दो दिन से भी भूखे होंगे, उस बंदे के बारे में क्या ख्याल होगा कि वो बंदा जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में क्या चीज़ समझा जा रहा होगा। एक फैमिली आउटिंग के लिए जाती है तो जिस क्रम की होटलिंग होती है आराम से 7-8 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है, 7-8 हज़ार रुपये, ये पूरे जो हमने 2 घंटे की या घंटे की एक मज़े के लिए हमने पैसे बर्बाद किए थे, लोगों की पूरे पूरे महीने की कमाई नहीं होती है थे पैसे। तो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त किस्म का सवाल पूछना है। जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग अंधे हैं, जो लोग किसी बीमारी में मुबतला थे, अल्लाह ताला ने किसी को बहुत ही बदसूरत पैदा किया कि कोई उससे करीब नहीं होना चाहता, उसके साथ कोई उसका कि रिश्ता भी नहीं हो पाता बिलफर्ज उसका, तो उसको अल्लाह ताला किस तरह कंपनसेट करेंगे? जो अल्लाह ताला ने जिसको अंधा पैदा किया था, जिसको जिस डिसेबिलिटी के साथ पैदा किया था, किस तरह कंपनसेट करेंगे अल्लाह ताला, क्या कंपनसेशन होगी? एक हदीस सुनाता हूँ फिर उसके बाद उसको समझाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे सहाबा में से जो रसूलुल्लाह सल्लम के फॉलोअर्स थे, जो आप सल्लम के जिन्होंने आप सल्लम के ऊपर अपना जान माल हर चीज़ लगाई थी, मेरे सहाबा में से जो मुहाजिर हैं, मुहाजिर कौन थे? जो मक्का छोड़ के आए थे, हिजरत करके आए थे, अपना घर जारी बात वो बेच के नहीं आए थे, किसी और को रेंट पे दे के नहीं आए थे, अपने जानवर बेच के नहीं आए थे, अपने फैमिली में से जो नहीं फॉलो कर रहे थे इस्लाम को उनको छोड़ के आए थे, उन्होंने रिश्ता भी तोड़ दिया, शहर भी छोड़ा, सब कुछ कता किया, सब कुछ छोड़ के आ गए थे। मेरे सहाबी में से जो मुहाजिर हैं वो अंसार की नस्बत, अंसार कौन थे? जो मदीना ही के रहने वाले थे, उनके जो फार्म लैंड थी वो उनके पास रही थी, उनके जानवर भी उनके पास रहते, बीवी बच्चे भी रहते साथ, उनका जो सोसाइटी के अंदर जो टाइटल्स मिले हुए थे वो भी रहते। जो मेरे मुहाजिर हैं वो अंसार की नस्बत 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, जाएंगे दोनों जन्नत में लेकिन वो 40 साल पहले चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई हिसाब देने वाली चीज़ें नहीं थी, कोई पैसा था ही नहीं उनके पास, वो किस चीज़ का हिसाब देते कि अला ये मैंने पैसा कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया, क्योंकि घर शहर सब कुछ छोड़ के चले गए थे वो, बाकी चीज़ें नेमतें नहीं थी उनके पास, जिनके पास था उनका हिसाब लंबा होगा, ये नहीं कि वो जहन्नम में चले गए, उनका डिले ज़्यादा पड़ जाएगा उनके ऊपर। तो जिसको अल्लाह ताला ने अंधा पैदा किया था, अल्लाह ताला ने आखिरत के हिसाब से, क्योंकि अगर हमारी ओरिएंटेशन आखिरत की तरफ है तो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो जाता है। शायद वो बंदा लकी होगा जो अंधा पैदा हुआ था, अब अनलकी नहीं है, वो शायद लकी है। किस हिसाब से? जो वो इन आँखों से गुनाह कर सकता था वो नहीं कर सका, बच गया उन तमाम चीज़ों से, उसकी गुनाहों में वो चीज़ तो नहीं शामिल होगी। जो वो इन आँखों से खैर कर सकता था, अगर उसको आँखें अल्लाह ताला ने दी होती और अगर उससे वो कोई खैर कर सकता, अल्लाह ताला उसको वो भी अता कर देंगे। जो कोई कम अकल वाला पैदा हुआ था, ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी उसके अंदर, वो कभी ज़्यादा, तो वो दुनिया के अंदर जो गुनाह कर सकता, जो चलाकी, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, करप्शन, झूठ, चालबाजी, वो उन तमाम चीज़ों से वो बच गया, क्योंकि वो अकल बेचारे के अंदर इतनी थी नहीं। और जो वो काम अच्छे कर सकता था अगर अल्लाह ताला उसको ज़हीन पैदा करते, तो वो नहीं कर सका, अल्लाह ताला वो उसको अता कर देंगे। तो इस हिसाब से जो मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, आप और मैं, हम लोग ज़्यादा पकड़ में आएंगे, क्योंकि ना तो हम लोग डम हैं, ना हम लोग फिज़िकली कोई डिसेबिलिटी के साथ है, ना हमारे पास पैसों की कमी है, ना कोई एजुकेशन की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और तमाम नियमतों में सबसे बड़ी नियमत अल्लाह ताला ने हमें वैसे गिफ्ट कर दी, वो है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही एक मुसलमान घराने में कर दिया, तमाम नियमतों में सबसे बड़ी नियमत। वरना अदरवाइज आप ये सोचें कि अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है इसी हॉस्पिटल के अंदर कोई वॉशरूम साफ करने वाला जो उन्होंने सर्वेंट वो रखा होगा, एम्प्लॉय रखा होगा, बिलफर्ज वो क्रिश्चियन है, क्या चांस था वो हम जैसे मुसलमानों को देख के मुसलमान हो गए कभी? अगर हम वहां पैदा होते, मैं उस बॉडी के अंदर होता, मैं क्या है? मैं इंप्रेस होता है इन लोगों से, तमाम लोगों से इंप्रेस होता कि तकरीरें तो ये बहुत अच्छी कर सकते हैं, कि किस तरह के लोग हैं यार, तो क्या चांस एग्जिस्ट करता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री में पैदा हुआ और वो उधर ही रहता है, 18 करोड़ में से 18 करोड़ या इससे भी ज़्यादा तो है ही मुसलमान, उसके बावजूद इस्लाम कहीं भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा। तो सबसे तमाम नियमतों में सबसे बड़ी नियमत अल्लाह ताला ने जो अता की है वो ये नियमत अता की है, तो हम क्या शुक्र अदा करते हैं उसका, और हम किस तरह जो है हम उसके बावजूद हम इतनी गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तमाम बातें ये सिर्फ आपको एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ दे सकती हैं, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होगा वो आपको सिखाया जा सकता है, दीन और ईमान जो है ये सिखाया नहीं जा सकता, ये आपने खुद डिवेलप करना होता है अपने अंदर, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो है वो आप अल्लाह ताला के सामने किस तरह, अल्लाह ताला ने क्या कुरान में फरमाया है, कुल्लुहुम आते ही यौमल क़यामत फ़र्दा, क़यामत वाले दिन हर कोई इंडिविजुअली मेरे पास आएगा, पेरेंट्स का कोई लिंक नहीं होगा कि मेरे फादर ये थे, मेरे पास ये टाइटल था, मेरे पास ये सीवी थी, डिग्री ये थी, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, या जिस तरह अभी रिसेंटली वो FBR ने क्या किया है कि टैक्स नंबर्स के कार्ड देने शुरू किए, तो मुझे भी टैक्स का कार्ड मिला है कि ये टैक्स पेयर्स हैं, तो टैक्स पेयर्स को प्रिविलेज मिलेगी, मैं अल्लाह ताला को ये नहीं दिखा सकूँगा, कोई चीज़ नहीं, तन्हा लाया जाएगा और देखा जाएगा कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे क्या माल है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तमाम पाकी, तमाम तारीफ, तमाम अच्छी चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से हैं, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह ताला के आगे कि अगर मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो।